السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. آمين. एक महीना पहले हमारा ये सफर शुरू हुआ था आप लोगों के साथ। ये तमाम दिन हमने गुजारे, इकट्ठे गुजारे, और आज इस सिलसिले का लास्ट प्रोग्राम है। रमज़ान रुखसत होने के करीब है, ये अब सिर्फ एक मेहमान रह गया। 24 घंटे का भी नहीं, शायद इससे भी कम का। हम इसकी रूहानियत से मानूस हो गए थे और इसकी खुशबू से लुत्फ़ानंदोज़ हो रहे थे कि इसने अपना सफ़र भी बांध लिया, सामान्य सफ़र बांध लिया और जाने की तैयारी भी कर ली, और अब हमें अलविदा कहने वाला है। ये बड़ी मुश्किल जुदाई है। इस रमज़ान के साथ ही इसकी रौनकें भी रुखसत हो जाती हैं। ये सहरियाँ, ये क़याम, ये तरावी, ये मस्जिद की दौड़ें, ये हमारा इस तरह से इकट्ठे रोज़ाना प्रोग्राम में मिलना, ये हमारा जागना, ये भाग भाग के कुरान की तरफ लपकना। काश हमें पता चल सकता कि हम में से कौन है जिसकी इबादत कबूल हो गई, और कौन है हम में से जो कामयाब ठहरा, और कौन है हम में से जिसकी बख्शिश हो गई। इलाही, हम तेरी रहमत के तलबगार हैं। अभी कुछ ज़्यादा दिन नहीं गुजरे, मुझे याद है कि कल तक ही हम लोग सब इस रमज़ान का इंतज़ार कर रहे थे, और बल्कि दुआएं शेयर हो रही थी। अल्लाहुम्मा बल्लिगना रमज़ान, अला रमज़ान तक पहुंचा देना, चांद देखा जा रहा था और पता भी नहीं चला, और इसको अलविदा करने का वक्त आ गया। कल तक इस इस्तकबाले रमज़ान के दर्स हो रहे थे और मुबारकबादें मिल रही थी, और आज इसके जाने का टाइम हो गया, पता भी नहीं चला। जानते, यही हाल दुनिया का भी है, ये एक हाल पे नहीं रहती। दिन आते हैं और गुजर जाते हैं, फिर वो वाले दिन जो गुजर गए ना, वो कभी वापस पलट के नहीं आते। इसी तरह एक दिन दुनिया में एक बच्चा आता है और पता भी नहीं चलता कब जिंदगी बीत भी गई और जाने का वक्त आ जाता है। हर गुजरता दिन इंसान की ज़िंदगी को भी तो घटा रहा है और उसको अल्लाह ताला से मुलाकात के करीब कर रहा है। कामयाब तो वही है जिसे वक्त का गुजरना अल्लाह ताला से करीब कर दे और उसकी नाराज़गी वाले आमाल से दूर कर दे। हम अल्लाह ताला का बहुत शुक्र अदा करते हैं, बहुत शुक्र अदा करते हैं कि उसने हमें ये महीना नसीब कर दिया, इसकी जिसकी हमने दुआएं की थी, उस महीने को हमने पा लिया। ये भी बहुत बड़ी उसकी करम नवाजी है, बहुत बड़ा उसका शुक्र है कि सेहत आफियत के साथ हमें ये महीना देखना नसीब हो गया। और इस शुक्र के साथ साथ हम ये भी एतराफ करते हैं कि जैसा करना चाहिए था वैसा तो कुछ भी नहीं हो सका, जैसा इसका हक था वैसा हक तो हम नहीं अदा कर सके। कई लम्हात आपको भी याद होंगे, मुझे भी याद आते हैं, जिनको और ज़्यादा हम अच्छा कर सकते थे और ज़्यादा उनमें बेहतर इबादत कर सकते थे, ज़्यादा दिल लगा सकते थे। कई घंटे भी ऐसे याद आ रहे हैं जिनको ज़्यादा हम जिनमें इबादत कर सकते थे, जो हमारे हाथ से अब चले गए हैं, जिनमें हम तस्बीहात पढ़ सकते थे, हम कुरान पढ़ सकते थे और ज्यादा, मगर अब वो चले गए। इसी तरह कई जगह जुबान पे काबू पा सकते थे, कई जगह वक्त को जाया होने से बचा सकते थे, कई जगह इम्प्रूवमेंट आ सकती थी, बेहतरी लाई जा सकती थी। और मेरे ख्याल आप सब मेरे साथ एग्री करते होंगे इस पे। मगर हम उस तरह से नहीं कर सके और वक्त चला गया। सोचें, ये तो रमजान है जिसके बाद भी इंशाल्लाह अभी जिंदगी बाकी है, मगर एक वक्त होगा कि जिंदगी हाथ से चली जाएगी। अब रमजान पे तो हम रिग्रेट कर रहे हैं कि बेहतर हो सकता था, इससे ज्यादा जोर लगा सकती थी, इससे ज्यादा अच्छा कर सकती थी, मगर फिर भी अभी जिंदगी का एंड नहीं आया, अभी सिर्फ रमजान का एंड आया। एक दिन तो जिंदगी का भी एंड आ जाएगा, तब जो रिग्रेट होगा उसके खात्मे पे कि जिंदगी को और बेहतर कर सकती थी, तब कितना याद आएगा कि कितने सारे दिन, हफ्ते, घंटे, महीने, कितने सारे लम्हात थे ना जो मैंने सुस्ती में गुजार दिए, कहीं गफलत कर दी, कहीं लापरवाही हो गई, कहीं तवज्जो ही नहीं दी, या कहीं ऐसे कि पता ही नहीं चला कि वक्त कहाँ चला गया और सारी जिंदगी कट गई। इसी वजह से तो कयामत के दिन को यौमुल हसरह कहा जाता है, ये उसका एक नाम है, क्योंकि वाकई कयामत के दिन इसी किस्म की हसरतें बहुत सारे लोगों को होंगी, लोगों की मेजोरिटी को होंगी, कि वो रिग्रेट करेंगे, वो पछताएंगे, वो हसरतें करेंगे कि काश इससे ज्यादा बेहतर हम गुजारते जिंदगी। अभी तो ये रमजान था, इसी के ऊपर हमें अफसोस हो रहा है, हालांकि थ्रू आउट रिमाइंडर्स थे, गफलत से जगाने के लिए थ्रू आउट वाज हम सुन रहे थे, इसके बावजूद अभी भी हमें हसरत है, तो जिंदगी का क्या होगा जो कि गफलतों से भरी हुई, जिसमें हमने असल मकसद ही भुला दिया हुआ, जिसमें डिस्ट्रैक्शंस ही इतनी है। उस वक्त की हसरत क्या होगी? क्या फिर ये सब घंटे नहीं याद आएंगे जो हमने गंवा दिए? और अभी तो तौबा का दरवाजा खुला होगा रमजान के बाद भी, मगर वो वक्त कैसा होगा जब जिंदगी खत्म होगी तो तौबा का दरवाजा भी बंद हो चुका होगा, उस वक्त हसरत अफसोस का आलम क्या होगा? तो लिहाजा इस जाते हुए रमजान से हम एक लेसन अपने लिए लेना है कि जैसे रमजान आया और पता भी नहीं चला और हमारे हाथ से निकल गया, और ये हम सब मानते हैं कि बहुत तेजी से गया, इसी तरह मेरी ये जिंदगी भी मेरे हाथ से निकल जानी है, और इतनी तेजी से। और अगर मैं इसकी हसरत से बचना चाहती हूं अपनी जिंदगी के एंड में, तो मुझे अपना बेस्ट फुट फॉरवर्ड रखना है, मुझे जिंदगी ऐसे गुजारनी है कि हर दिन कोशिश करनी है, खुद को खींच के लाना है, खुद पर जबरदस्ती करके खुद को ऐसे कामों के साथ बांधना है जो मेरे लिए आखरत का सामान बन जाए, खुद को जबरदस्ती जोड़ना है ऐसी मजलिसों से जहां से मुझे खैर मिले, जहां से मुझे रिमाइंडर्स मिले, जहां से मेरा दिल बार बार पाक साफ होता रहे, गफलत दूर होती रहे, सुस्ती दूर होती रहे, मुझे कोई जगाता रहे। खुद को खुद बांधना होगा मुझे, ऐसे कोर्सेज में खुद को बांध लें, बांध लें, बांधना ही मसले का हल है, वरना वो कहते हैं ना, ये मन तो पुराना पापी है, शब भर में नमाजी बन ना सका। ये क्या जबरदस्त बात इकबाल ने कही है। ये वाकई ये हमारा हाल है कि ये मन तो इतना ऐसा हो चुका है ना, ऐसा पापी है, इतने आराम और मजे का ऐसा आदी हो चुका है, इसने तो नहीं मानना। इसको मनाने के लिए अगर आप वेट करेंगे ना, तो जिंदगी गुजर जाएगी ये मान के ना देगा। इसने 100 बहाने करने हैं, कभी कुछ कभी कुछ, कभी मसरूफियात का, कभी किसी चीज का, कभी किसी चीज का, कभी कल पे टाले जाएगा। मगर जैसे आपने देखा है ना, माएं बच्चों को दवा कैसे खिलाती हैं। बस दवा बच्चा जब रेजिस्ट करता है, तो कैसे माँ उसको हाथ में जबरदस्ती पकड़ के और फिर कैसे दवाई मुंह में डालती है। हमें भी अपने मन के साथ ऐसे ही करना पड़ेगा, वरना जिंदगी गुजर जाएगी, इसके बहाने खत्म नहीं होंगे। तो इन रातों में खुद को बांध लें, कुरान फहमी के कोर्सेज में खुद को रजिस्टर कर लें, ताकि चलो बंद जाएंगे तो चाहे थोड़ा थोड़ा करके ही सही, मगर अगले रमजान तक कहीं तो जुड़े रहेंगे। कुछ तो हमें ये तसल्ली हो जाएगी कि मैंने थोड़ा वक्त अल्लाह के रास्ते में लगा ही लिया, कहीं तो तसल्ली हो जाएगी, कहीं तो ये चैन पड़े आएगा दिल में कि शुक्र है इस कोर्स की वजह से चारों नाचार मुझे कुरान खोलना पड़ ही गया। कुछ वक्त पे तो ऐसी खुशी होगी कि चलो चाहे थोड़ा सा था, मगर इतना वक्त तो मैंने अल्लाह के रास्ते के लिए निकाल ही लिया था, क्योंकि बाकी सब तो फालतू है, इधर उधर के झंबेले हैं जिनमें हम घिरे हुए हैं, और ये दुनिया के झंबेले हमें छोड़ते ही नहीं। कोई दिन आपकी जिंदगी का ऐसा नहीं होगा कि आप कहेंगे अब मैं बिल्कुल फारिग हूं। तो इन दिनों में खुद को बांधने के लिए, खुद से कमिटमेंट करवाने के लिए, उस बच्चे की तरह जिसको माँ जबरदस्ती दबा देती है, खुद को जबरदस्ती जकड़ ले, चाहे दिल चाहे या ना चाहे। कह दे दिल को कि तू ना भी चाहेगा ना, मगर मैं तेरा इंतजार नहीं कर सकती, मुझे जिंदगी की हसरतों से बचना है। दुआ करें कि या अल्लाह इस जिंदगी को हसरतों से बचा लेना, वो काम ले लेना जो आखरत के दिन तुझे राजी करने के लिए, और जिनसे वहां पहुंच के जिन पे हसरत ना हो, वो काम ले लेना जिनसे बख्शिश हो जाए, जिन पे मुझे पछताना ना हो, मैं खुश हूं उनको देख के अपने आमालनामे में। और अल्लाह तू खुद करवा लेना, दिल ये भी कहेगा कि ये तो हो ही नहीं सकेगा, ये कैसे हो सकेगा, मैं तो कर ही नहीं सकूंगी। कदम उठाना हमारा काम है, करवाना अल्लाह ताला का काम है, वरना हिम्मत और ताकत तो हम में से किसी में भी नहीं। जभी तो हम कहते हैं ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, यही कह के आप, आपके सामने लिंक है, 2 मिनट लगेंगे, इसको फिल कर दीजिए, बिस्मिल्लाह कीजिए, आज कदम उठा लीजिए और अपने आप को खुद बांध लीजिए। ये जो कहना ना, नहीं मैं पढ़ती रहूंगी, नहीं मैंने सोच लिया इस दफा तो मैंने छोड़ना नहीं, ये सब भी बहाने हैं। 2 दिन याद रहेगा, उसके बाद 3रे दिन भूल जाएगा, मगर कहीं कमिटमेंट की होगी तो हो सकता है कि जुड़े रहें, और अगले रमजान तक हमारा वक्त कुरान के साथ गुजर जाए। दूसरा अहम काम जो आज हमने करना है, वो है बहुत ज्यादा आज दुआएं करनी है कि अल्लाह कबूल कर लेना, क्योंकि इंसान को नहीं पता उसके कोई अमल कबूल हुए या नहीं हुए। हम हुस्ने जन तो रखते हैं, अल्लाह ताला बड़ा गफूर रहीम है, मगर गारंटी कोई नहीं कह सकता। और जबकि हमारे जैसे लोग जो कि अगर नेकी एक करते हैं ना, तो साथ ही कुछ और ऐसी भी चीज़ कर देते हैं जिससे उसकी कैंसलेशन हो जाए, कहीं बैठ के गइबत कर देंगे, कहीं किसी को तकलीफ दे देंगे, कहीं किसी का मजाक उड़ा देंगे, कहीं कुछ झगड़ा कर लेंगे, कहीं कुछ ना कुछ ऐसा जरूर कर देंगे कि आमाल का साथ साथ हम खुद ही अपने सफाया करते रहें। और वैसे ही हम तो जितनी भी कोशिश कर लें, कबूलियत अल्लाह ताला के हाथ में है, वो हमारे हाथ में नहीं है। ये तो उसका फजल है कि वो किसी के कामों को कबूलियत का शर्फ अता फरमाते हैं। ये जो हम सोचते हैं ना, हम इतने अच्छे अमल कर ही रहे हैं, तो कबूल तो जरूर हो ही रहे होंगे, कैसे नहीं कबूल होंगे, ये बात गलत है। इसलिए कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने काबा भी बनाया था ना, कितनी बड़ी नेकी है। आम मस्जिद में भी आप एक ईंट लगवा दें तो सोचें कितनी बड़ी नेकी होती है। तो कहाँ काबा की तामीर करना अपने हाथों से, इसके बावजूद दुआएं मांग रहे थे, रब्बना तकब्बल मिन्ना। सहाबा कराम ईद की नमाज पे जब जाते थे तो एक दूसरे को कैसे ग्रीट करते थे, तकब्बल अल्लाहु मिन्ना व मिनकुम, अल्लाह हमसे भी और आपसे भी कबूल करे। अब खुद सोचें, वो ये सहाबा थे जिनकी नमाजें, जिनके रोजे, जिनकी नेकियां, उन तक तो हम पहुंच ही नहीं सकते, फिर भी वो दुआएं करते थे। यानी अब रमजान खत्म हो गया तो अब दुआओं का टाइम है कि अल्लाह कबूल कर लेना, अल्लाह कबूल कर लेना, अल्लाह हमसे भी कर ले कबूल, आपसे भी कर ले, वो ये दुआएं करते थे। और हमारे तो वैसे ही सारे ही कमल बड़े ही निकम्मे हैं, क्या हमारी नमाजें और क्या हमारे रोजे। फिर उनकी ये दुआएं थी तो हमारी कितनी होनी चाहिए, हमें तो ज्यादा जरूरत है। तो अल्लाह हमने तो जो करना था वो तो जैसा तैसा कर लिया, बेशक हम यही कहेंगे अल्लाह तेरी शान के लायक तो हरगिज नहीं है, मगर तुझसे ये दुआ है कि तू इसी को कबूल कर लेना। यानी कि हमारी कोई नेकी बहुत ही बड़ी थी और आलीशान थी, इसलिए कबूल होनी ही चाहिए। नहीं अल्लाह, हमारी नेकी तो किसी काबिल नहीं थी, मगर तेरा फजल बहुत वसी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ सिखाई ना, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन फ़ضلिका व रहमतिक फ़इन्नहु ला यमलिकुहा इल्ला अंता। अल्लाह, मैं तेरे फजल का और तेरी रहमत का सवाल करता हूँ, और ये सिर्फ तेरे ही हाथ में है अल्लाह, कोई इसका मालिक नहीं सिवाय तेरे, तू ही दे सकता है किसी को ये फजल भी और ये रहमत भी, ये इंसान खुद नहीं पा सकता, अल्लाह ताला की मर्जी जिसको मर्जी अता फरमाते, तो ये उसका फजल है, ये उसकी रहमत है अगर वो कबूल कर ले। तो ये दुआएं करें हम कि अल्लाह ताला हमसे कबूल करके और अपना फजल हमें अता फरमाते। याद रखिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नमल आमालु बिल खवातीन, आमाल का दारोमदार खात्मे पे है, यानी जिस पे एंड होता है, एंड हम किस पे कर रहे हैं। एक वो है जिसका रमजान निकम्मा सा गुजरा, उसको चाहिए कि एंड अच्छा करे। दूसरी तरफ वो है जिसने बहुत ही अच्छा रमजान गुजारा, उसको भी चाहिए कि एंड अच्छा करे। आपका रमजान चाहे निकम्मा गुजरा चाहे बेस्ट गुजरा, एंड बेस्ट होना चाहिए, क्योंकि आमाल का दारोमदार एंड पर है, शुरुआत आपने कैसे की थी उस पे नहीं, एंड आपने कैसे किया है। एंड अच्छा हुआ, ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल, ये तो वैसे भी कहा जाता है ना, सब अच्छा है जो जिसका इख्तिताम अच्छा हो। और दुआ भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है कि अल्लाह ताला हमारे जो कामों का एंड है वो अच्छा कर देना। तो इन दिनों को, दिनों आप क्या रह गए, अब तो घंटों के कह सकती हूं मैं, कि अगर कल ईद हो जाती है तो सिर्फ घंटे ही हैं, तो इन घंटों को सिर्फ ईद की तैयारी में, मशगूलियत में मत गुजारिएगा। हम तो 27वीं के बाद ही रमजान को खत्म कर लेते हैं ना, हालांकि मेहमान को भी जब आप रुख्सत करते हैं तो कैसे करते हैं, जो उसका जाने का दिन होता है, आप लोग सफर वगैरह करते हैं, जो जाने का दिन होता है तो क्या होता है, सब जमा हो जाते हैं, सब छोड़ने आते हैं एयरपोर्ट तक, खुदाफिज वहां से करके जाते हैं। तो ये एक मेहमान की इज्जत होती है कि उसको अच्छे तरीके से रुख्सत किया जाए। और हमारा क्या हाल है कि मेहमान आया तो बड़ा ही हमने इस्तकबाल किया, लेकिन वो जा रहा है तो हम अपने कामों में मगन है, हमें नहीं परवाह वो जा रहा है तो जा रहा है, जाते वक्त तो उसको अच्छी तरह से रुख्सत कर लें, कुछ दूर तक छोड़ आए, अभी तो गया भी नहीं, हमने पहले ही खुदाफिज कर दिया कि या आज ही कर लें, कल के लिए खुदा हाफिज, ये नहीं होना चाहिए। एंड को अच्छा करें, एंड को बेस्ट बनाएं। यानी है, हम नहीं जानते अगर आज के दिन ही शाम को चांद नजर आ जाता है तो ये यानी लास्ट इफ्तार ही होगी और ये लास्ट रोजा है। तो कोशिश ये कीजिए कि आज की इफ्तार से पहले का जो टाइम है ये आप जरूर दुआओं में गुजारें। क्यों? इसलिए कि देखें, अगर शव्वाल का चांद नजर आ जाता है ना, तो उसके बाद आप जो दुआ करेंगे वो वैसी नहीं होगी जैसी आप रोजे की हालत में जो कर रहे हैं, जैसी रमजान की दुआएं हैं। देखें, जो रोजादार है उसकी दुआ कबूल होती है, ठीक है? अब आप रोजे के साथ हैं, रमजान की बाबरकत खड़ी हैं, जो उस वक्त की दुआ होगी वो उसके आधा घंटा बाद जो आप दुआ करेंगे ना, मगरिब हो जाएगी उसके बाद, वो वाली बात नहीं आएगी। इसी तरह आज सदका जरूर करें, इसलिए कि अगर आज शाम को चांद नजर आ जाता है तो जब चांद नजर आ जाएगा उसके बाद जो आप सदका करेंगे, आधे घंटे का ही फर्क अगर पड़ जाता है, आधे घंटे बाद जो सदका करेंगे उसका वो अजर नहीं है आपको मिलना जो आधा घंटा पहले करने का होगा। कल कर लेंगे तो वो बात नहीं होगी जो आज सदका करने की होगी। आखिरी ताक रात भी है और आज लैलतुल कदर भी हो सकती है। फिर तो $1 भी दिया तो 84 ईयर से ज्यादा के हर दिन $1 देने का अजर मिलता रहेगा, हर दिन का, और उससे भी ज्यादा, क्योंकि बेहतर है ना उसे। तो रमजान में जो नेकी का अजर बढ़ जाता है, कितना बढ़ता है इसका हम अंदाजा नहीं कर सकते। वो रब करीम है जिसके लिए चाहे अजर को जितना बढ़ा दे, चाहे बेहिसाब अता कर दे। और कयामत के दिन तो जानते हैं मोमिन का साया किस चीज से होगा, जब सूरज बहुत करीब होगा तो साये के लिए क्या चीज होगी? सदका, आपका शेड सदका है। अब आपकी मर्जी, अपना सदका आप बढ़ा दें, अपना शेड और गहरा कर दें या हल्का रखें। तो आज की रात में भी सदका कर लें और आज की रात में नेकी का इरादा भी कर लें कि मैंने कुराने करीम को अब सीखना है, समझना है, उसके लिए भी रजिस्टर किए बगैर ना उठें। जो भी दिल में वसवास आए उनको झटक दें, दूर फेंक दें, बस ये कहें या अल्लाह मेरा काम इरादा करना है, पूरा करना तेरा काम है। कभी भी कोई माँ देखी है आपने जो बच्चे को घर पे बिठा ले कि मेरे बच्चे तूने स्कूल नहीं जाना, अगर स्कूल चला गया तो क्या होगा तेरा, कितना तुझे पढ़ना पड़ेगा, कितना मुश्किल होगा, इम्तिहान भी देने पड़ेंगे, मेरा तो बच्चा इतना लाडला मैं इसको घर ही बिठा लेती। कभी आपने ऐसा देखा किसी को? नहीं देखा ना। क्यों? क्या माँ को बच्चे से मोहब्बत नहीं है? इसी वजह से वो चाहती है कि वो तालीम ले, वो इस तालीम को अहमियत देती है, उसको पता है इसमें मेरे बच्चे का फायदा है, इसलिए वो परवाह नहीं करती। बच्चे को पढ़ना पड़ेगा, सुबह सुबह उठना पड़ेगा, इम्तिहान देने पड़ेंगे, घंटों तक स्कूल में ही रहना पड़ेगा, ये वो सब गवारा कर लेती है। क्यों? इसलिए कि उसको यकीन है कि इसमें फायदा है। आपको यकीन है कि कुरान में आपके लिए फायदा है कि नहीं? यकीन बताइए। अगर आपका जवाब हाँ में है तो फिर देर किस बात की है? कोई अगर कहता है कि नहीं इसमें कोई फायदा नहीं है तो फिर तो ठीक है, वो ना आए इस तरफ। लेकिन जो समझता है ना, इस माँ से सीख ले, जो अपने बच्चे को, छोटे छोटे बच्चे होते हैं 3-4 साल के, उनको भी बस्ते पहना के स्कूल भेज रही होती, उसको कितना यकीन है इस स्कूल की पढ़ाई पे कि ये मेरे बच्चे के लिए फायदेमंद है। आपको अल्लाह के कलाम पे यकीन नहीं है? कि ये मेरे लिए फायदा मंद है, क्या आप उसके लिए थोड़ी सी एफर्ट कर ले? वो मासूम बच्चे से एफर्ट करा रही है, जो छोटा है, ना समझ है, नन्ही सी जान है, उससे भी मेहनत करा रही है। 4-5 घंटे तो बच्चे को स्कूल में रहना पड़ता है ना, कम से कम। वो उसके ऊपर ये बोझ डाल रही है सिर्फ इसलिए कि उसको यकीन है ये इसके लिए फायदा मंद है। मैं सोचती हूँ जितना एक माँ को यकीन है इस दुनिया की तालीम पे कि ये मेरे बच्चे के लिए फायदा मंद, कम से कम इतना ही यकीन, इतना सा यकीन हमें नहीं है कि हम इस कुरान को लेंगे तो ये मेरे लिए फायदा मंद है। इसके लिए मुझे थोड़ी सी अपनी जान लगानी पड़ भी जाए, थोड़ी मेहनत करनी पड़ भी जाए, थोड़ा सा अपने आप को थकाना पड़ भी जाए, तो क्या हो गया? ये मेरे लिए फायदा मंद है। जबकि जो तालीम बच्चा स्कूल में हासिल करता है उसमें और कुरान में बहुत बड़ा फर्क है। इतना बड़ा फर्क ही यह है जितना अल्लाह ताला का अपनी मखलूक के मुकाबले में फर्क है। कोई मुकाबला है? कितना बड़ा फर्क है, बहुत बड़ा, जो बयान भी नहीं किया जा सकता ना। कोई मुकाबला है? नहीं, कोई मुकाबला नहीं। कहाँ अल्लाह ताला, कहाँ उसकी मखलूक। तो उसके कलाम को भी बाकी तमाम उलूम पर ऐसे ही बरतरी हासिल है जैसे अल्लाह ताला को अपनी मखलूक पे। वो ही निस्बत है, जैसे अल्लाह ताला का मुकाबला नहीं आप कर सकते उसकी मखलूक के साथ, किधर हकीर सी मखलूक और किधर अल्लाह की जात। इसी तरह कुरान है, बाकी सारे उलूम इंसानी उलूम है, वो अल्लाह ताला का कलाम है, कैसे मुकाबला हो सकता है? इसके बावजूद हमें इतना सा भी यकीन नहीं कि ये मेरे लिए फायदा मंद है। क्योंकि अगर इतना सा भी यकीन हो तो हमें एक लम्हे के लिए भी ना इस ऑफर को जाने दें, एक लम्हे के लिए भी ना सोचें कैसे होगा, क्यों होगा, ये होगा, वो होगा। ये सिर्फ आपके यकीन का इम्तिहान है। तो क्या कहते हैं आप लोग, लब्बैक कहेंगे और इन रातों में नियत करेंगे? इन रातों में एक अच्छी नियत भी कितना बड़ा अजर आपके लिए लिखवा सकती है। और पिछली रातों में अगर आप सोते जागते भी रहे तो आज की रात को तो पूरी जान लगा देनी है, पूरी मेहनत करनी है, इसका कोई लम्हा जाया नहीं करना, क्योंकि अब ये तो आखिरी रह गई है ना। इसके बाद अगर रमजान अगली रात भी रहा तो वो ताक रात नहीं होगी, और अगर नहीं रहा तो ये रमजान की भी लास्ट नाइट और ऑड नाइट भी है। तो फिर कैसे जाया कर सकते हैं इस लम्हे को, इस गुजरती हुई रात को नहीं जाया कर सकते, दोबारा नहीं आनी। अगला रमजान किसने देखा और किसने नहीं। और यकीनन आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा। मैंने तो खुद इस रमजान में भी और पिछले रमजान में भी अचानक अम्वात का बहुत सारी खबरें सुनी, कोई सोया और उठ नहीं सका, किसी के साथ हादसा हुआ और बच नहीं सके। मतलब तो ऐसी अचानक अम्वात कि इंसान परेशान हो जाता है कि देखो इसने कितना सोचा, मैं फलाने जगह जाके मैंने इफ्तार करनी है, फलां जगह मुझे ये इनविटेशन आया हुआ है, ईद पे ये करना है, ये करना है, और पता ही नहीं था कि ये आखिरी रमजान है, रमजान के बीच में लोग दुनिया से चले गए। तो लिहाजा इस रात को गनीमत जाने जो हमें मिल गई है, क्योंकि बहुत सारों को नहीं मिली। और आज के दिन की इफ्तार से पहले बस आखिरी घंटे को सबसे कीमती जाने, और उसको दुआओं में गुजारें, और खास तौर पे कबूलियत की दुआओं में, कि अल्लाह ताला कबूल कर लेना। जिससे अल्लाह ताला ने कबूल कर लिया ना, एक भी अमल कबूल कर लिया, वो कामयाब है। क्योंकि वो कबूल कर ले तो फिर वो कुछ अता फरमा देगा कि उसकी तो छोटी सी भी अता जो है ना हाँ वो बहुत बड़ी है, उसकी अता का एक जर्रा भी मिल जाए ना तो बहुत है, हमारी दुनिया और आखिरत संवर जाएगी, बस वो कबूल कर ले। तो कबूलियत की दुआ करते रहना, रब्बना तकब्बल मिन्ना, रब्बना तकब्बल मिन्ना, इन्ना कंत समी अलीम। अल्लाह ताला हम सबसे कबूल फरमाए, हम तो बड़े नातवां हैं, बहुत ही कमजोर हैं, अल्लाह ताला हमसे जैसे टूटा फूटा भी है तो इसी को कबूल कर ले। उम्मीद है आपने बातों पे गौर किया होगा और उम्मीद है कि आप इनको समझेंगे। इसके अलावा आप लोगों को ये भी इतला देनी थी कि इंशाअल्लाह ताला ह्यूस्टन में हमारे ऑन द ग्राउंड इदारा कायम हो रहा है, जो इस मकसद से कायम किया जा रहा है कि इससे आलिम और आलिमाएं निकलें और फिर यहाँ पर दीन का पैगाम आगे पहुँचाएं, लोगों की सही रहनुमाई करें, इमाम बने, लीडर बने, दीन के दाई बने। इसके लिए आप सबसे दुआओं की दरख्वास्त है कि आप अपनी दुआओं में ये ज़रूर याद रखिएगा कि अल्लाह ताला इसमें बरकत डाले और इसके ज़रिए हक बात पूरी दुनिया तक फैले और इसको अल्लाह ताला सदका जारिया बना दे उन तमाम लोगों के लिए जो इसमें अपना हिस्सा डालें और इसमें नियतों को खालिस रखे और बेहतरीन इसमें मुआविनीन अता फरमा दे। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा, इंशाअल्लाह।